नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षक अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए नए नियम घोषित किए। पहली जुलाई से आधार और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 5212 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। और देहरादून में सरकारी स्कूलों को आधुनिक और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलवे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। श्री बिरला ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि ये प्रशिक्षण आपके जीवन में नया दृष्टिकोण, नया विचार और कार्य करने की प्रेरणा देगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से राज्य प्रशासनिक सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट के लिए नए नियमों की घोषणा की है। पहली जुलाई से केवल वे लोग ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। 15 जुलाई से ये नियम आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने पर भी लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बुक कराने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला किया गया है।
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ सही उपयोगकर्ताओं तक पहुँचे।
आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब राज्य सरकार से तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि की नियमावली को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
योजना का उद्देश्य आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाना है। इस सहायता से जरूरतमंदों को रहने, खाने, इलाज, पढ़ाई और रोजगार जैसे कार्यों में मदद दी जाएगी। जिनकी आमदनी का जरिया प्रभावित हुआ है उन्हें भी लाभ मिलेगा। योजना के लिए धनराशि अंग्रेजी शराब की बिक्री पर सेस लगाकर जुटाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि इस योजना की महत्वपूर्ण बात इसकी तत्काल मदद व्यवस्था है। पात्र व्यक्ति के आवेदन पर ब्लॉक स्तर की टीम 5,000 रुपए तक की सहायता तुरंत दे सकेगी। 10,000 से 25,000 रुपए की मदद जिला समिति 15 दिन में स्वीकृत करेगी। जरूरत अधिक होने पर राज्य स्तरीय समिति 5,00,000 रुपए तक की सहायता दे सकेगी। योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन, दवा से जुड़ी किट, अस्पताल पहुंचने की सुविधा, रहने खाने की व्यवस्था और मेधावी छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी। मनरेगा या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले महिलाओं और उनके बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक सीमित करने के लिए देहरादून प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में फर्जी राशन और आयुष्मान कार्ड के मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए व्यापक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्री बंसल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 15 दिनों के भीतर आयुष्मान कार्ड धारकों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को 3,87,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों का विवरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने और टीमें गठित कर घर घर जाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जिले में सिर्फ 35,393 राशन कार्ड सत्यापित हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अपात्र कार्ड धारकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से सिर्फ उन्हीं को राशन कार्ड मिलेगा जो नियमों के अनुसार पात्र होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 5,212 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित UJVNL की 126वीं बोर्ड बैठक में ये लक्ष्य तय किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम के प्रदर्शन और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के सापेक्ष उपलब्धियों की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में सिरकारी भयोल रूपसिया बगड़ परियोजना के सिविल पैकेज को हाइड्रो पैकेज में शामिल करने का अनुमोदन दिया गया। मद महेश्वर परियोजना की समय सीमा को भी विस्तारित किया गया। वहीं मनेरी भाली परियोजना में रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से सर्वे कराए जाने को मंजूरी दी गई। देहरादून में सरकारी स्कूलों को आधुनिक और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 168 माध्यमिक विद्यालयों में 884 बड़े LED टीवी लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए जैम पोर्टल पर बिड अपलोड कर क्रय आदेश जारी कर दिया गया है। ये कार्य खनिज न्यास, जिला योजना और CSR फंड के माध्यम से जुटाए गए 6 करोड़ रुपए की सहायता से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
स्कूलों को डिजिटल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। पहले से ही इन स्कूलों में व्हाइट बोर्ड, कक्षा में 2 LED लाइट, खेल के मैदान, रसोई घर, बिजली, पुस्तकालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा चुकी है। अब प्रत्येक कक्षा में टीवी लगाए जाने से छात्रों को डिजिटल कक्षाओं का लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल इससे पहले नैनीताल और अल्मोड़ा में भी इसी मॉडल के तहत सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बना चुके हैं। देहरादून में भी उन्होंने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए खनिज न्यास से 3.67 करोड़ की धनराशि शिक्षा विभाग को डिजिटल शिक्षा के लिए दी है। ONGC और हुडको ने भी जिलाधिकारी के इस प्रयास में भागीदारी निभाते हुए फर्नीचर, LED बल्ब और स्क्रीन उपलब्ध कराकर सहयोग दिया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक।
विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उधम सिंह नगर जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिपुरी में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, डेयरी, मत्स्य, रेशम, फल प्रसंस्करण, रीप स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाकर जानकारियां दी गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अभियान के तहत किसानों को उनके द्वार आकर कृषि से संबंधित योजनाओं और कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है ताकि कृषक उन्नत बीजों के साथ ही कृषि की नई तकनीकों को अपनाकर लाभ उठा सकें व अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकें।
हमने ये सुनिश्चित किया है, हमारे 6,000 वैज्ञानिक 29 तारीख से गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, किसान को बता रहे हैं कि आपने कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, कौन से रसायन डालना है, कब आपने बीज बुना है ताकि उसकी उपज बढ़े, उसकी आय दुगनी हो। इसके लिए ये हमारा अभियान लगातार चल रहा है। वैसे तो ये अभियान 12 तारीख तक है, लेकिन हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति थोड़ा भिन्न है। मैंने कृषि मंत्री से अनुरोध किया था, हम इसको एक हफ्ता और चलाएंगे और हर गांव किसान तक पहुंचकर इन योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और अपने उत्पाद को बढ़ाएं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए नए नियम घोषित किए। 1 जुलाई से आधार और OTP सत्यापन अनिवार्य। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 5,212 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है और देहरादून में सरकारी स्कूलों को आधुनिक और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।